ओम शांति। बाबा ने हम सबको आत्म दर्शन कराया, हमें अपनी सीट पर सेट किया। जिस सीट पर लंबे समय पर माया ने अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया था, अनेका अनेक रूप में माया ने हमारे साम्राज्य पर अपना कब्जा जमा कर रखा था, जिसका हमको पता नहीं था, और बाबा ने हम सबको उसका एहसास कराया कि तुम कौन थे, तुम्हारे संस्कार कैसे थे, तुम्हारा मन कैसा था, बुद्धि कैसी थी, संस्कार कैसे थे। तो हमें बहुत बारीकी से बाबा ने हमारा स्वयं का एहसास कराया। राज्य दरबार, जो आज बाबा ने कहा कि इसकी राज ऋषियों के दरबार है, अधिकार भी हैं तो वैराग्य भी है, नशा भी है, श्रेष्ठ त्याग है तो श्रेष्ठ भाग्य भी है, राजाएं भी हैं तो ऋषि भी हैं, तपस्या भी है। तो हम सबको इन चीजों का बाबा ने एहसास कराया, स्वयं की स्मृतियां दिलाई हमें, जिन स्मृतियों से हम विस्मृत हो चुके थे, मूर्छित हो चुके थे, बेहोश हो चुके थे, हम सबको होश मिलाया। तो इस मधुबन की होली लैंड पर हम सब आत्माओं का कितना बड़ा महान भाग्य है कि स्वयं बाबा आकर हमको इतने बड़े बड़े टाइटल देकर हमारी स्मृतियों को समर्थ बनाते हैं, आत्मा में एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति भरते हैं, जिसे आत्मा की आंखें खुल जाती हैं, आत्मा को पंख लग जाते हैं, उड़ने लगती है, खुशी में झूमने लगती है, एक अलौकिक नशा चढ़ जाता है, जीवन में उमंग सा बढ़ जाता है। तो बाबा ने जैसे हम सबको एक संजीवनी बूटी सुना दी, मूर्छित से सुरजित हो गए। सुदर्शन चक्र का हमारे में बाबा ने हमारे हाथ में डाल दिया, हमारे गले में डाल दिया कि इस चक्कर को फिराते रहो। हमारे भाग्य की स्मृतियां दिलाई, समय की स्मृतियां दिलाई, तुम कल्प कल्प के विजयी आत्माएं हो वो स्मृतियां दिलाई, अगर विजयी आत्माएं हैं तो उनकी क्या निशानियां होंगी वो स्मृतियां दिलाई, विजय नहीं होती है तो उसके क्या कारण हैं वो बताया, और मन बुद्धि संस्कार जो सूक्ष्म शक्तियां हैं उनको कैसे कंट्रोल में रखना है उसकी विधि बताई। स्थूल कर्मेंद्रियों पर तो शासन करना आसान है, उन पर नियंत्रण रखना आसान है, लेकिन जो सूक्ष्म शक्तियां हैं उन सब के बारे में बाबा ने हम सबको बताया। फिर मेले के बारे में बताया कि मेला लगा हुआ है, मेले में क्या क्या होता है। ब्रह्मा बाप ने अपना एग्जाम्पल दिया, ब्रह्मा बाप के अंतिम स्टेज साइंस और साइलेंस का एग्जाम्पल, साइंस से क्या होता है, साइंस ये कर सकती है तो आपकी साइलेंस की शक्ति क्या नहीं कर सकती है। तो बहुत सारी वैरायटी ज्ञान का जो बखर है, जो खजाना है, हम सबके सामने बाबा रोज रखते हैं, लेकिन उस खजाने को हम अपने स्वयं के जीवन में कितना उसका अमल मिला पाते हैं, कितना उसके ऊपर हमारी नज़र रहती है, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। एक बाप है, बच्चों के सामने तो अपना वो सारा खजाना रख देता है, फिर उस खजाने को यूज़ कैसे करते हैं वो भी बाप बच्चों को भी बता देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम उस खजाने का महत्व नहीं समझते हैं, खजाना देने वाला कौन है उसका महत्व नहीं समझते हैं, उस खजाने को उपयोग में लाने के लिए अपने को ऐसा योग्य नहीं बनाते हैं, तो वो जैसे खजाना मिट्टी के समान बन जाता है, फिर उसमें पर याद भी नहीं आता है। जैसे हमारे पास बहुत धन है और सारा बैंक में जमा है, समय आने पर हम उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमको समय पर स्मृति नहीं आए, विस्मृत हो जाएं, तो जैसे होते हुए भी नहीं है। तो बाबा ने हम सबको ज्ञान के खजाने से संपन्न बनाया है। तो आज की मुरली पर आएंगे, हम देखेंगे कि सारे दिन में जो आज मुरली चली उसको हमने अपने जीवन में कितना लाया और उसके जानने को कितना बढ़ाया, या अगर उसके जानने को अपने जीवन में नहीं लाया तो उसके क्या क्या कारण हैं, कहाँ कहाँ कमजोरियाँ रह गई हैं, कहाँ कहाँ माया के गेट खुले रह गए हैं। जैसे बाबा ने कहा, ऐसे नहीं सोचना कि एक ही कमजोरी है, वो एक चिंगारी ही पूरे जंगल को खा करने के लिए पर्याप्त होती है। ऐसे ही हमारे जीवन में अगर एक भी कोई छोटी मोटी कमजोरी भी रह गई तो हमारी सारी की कमाई चट हो सकती है। कितना कदम कदम पर हमको सावधानी बरतने की जरूरत है, भविष्य 21 जन्मों का खजाना जमा करने के लिए वो अलग बात है, लेकिन अंतिम समय का जो पेपर बाबा ने कहा एक सेकंड का होगा, केवल एक ही प्रश्न होगा एक सेकंड का, उस एक सेकंड की तैयारी के लिए इतना हम पूरा संगम युग इसका पुरुषार्थ कर रहे हैं, और उस सेकंड हम धोखा खा जाएं तो स्वयं के ऊपर हमको कितनी आत्मग्लानी होगी, कितना पश्चाताप होगा, कितना मन अंदर में जार जार रोएगा, अपने अंदर एक घृणा भावना पैदा होगी कि जो हम कर सकते थे और हमने नहीं किया तो उसको क्या कहेंगे। तो आज बाबा ने कौन सी दरबार देखी, राज ऋषियों की दरबार, और इस दरबार के क्या महत्व है, क्या विशेषता है इस दरबार की, ये दरबार केवल संगम युग पर ही लगती है। सारे 5000 वर्ष में, सारे कल्प में एक ही बार केवल संगम पर ये दरबार लगती है, जिसमें राज ऋषियों की दरबार है और जिसमें राजाएं भी हैं तो ऋषि भी है। अब हम देखेंगे राजाओं की क्या विशेषताएं होती हैं और ऋषियों की क्या विशेषताएं होती हैं, और देखेंगे उन दोनों विशेषताओं में से राजाओं की और ऋषियों की हमारे में कौन कौन सी है, कौन कौन सी नहीं है। तो राजा की क्या विशेषता होती है, जो एक अच्छा शासक होता है, एक अच्छा प्रजा का पालन करने वाला राजा होता है, क्या विशेषताएं होती है उसकी। हाँ, सारे कर्मचारी, सारे प्रजा, सारे मंत्री उसके अधीन में रहते हैं। क्यों अधीन में रहते हैं, क्या कारण है, क्योंकि एक तो वो शक्तिशाली है और दूसरी बात क्योंकि वो सबका ध्यान रखता है, तंग नहीं करता है किसी को, सबकी पालना करते, लॉ एंड ऑर्डर का पूरा प्रावधान जो नियम कायदे बने हुए हैं उनके अनुसार ही चलता है वो, ताकि उसकी प्रजा सारी खुश रहे। तो ऐसे हम सब आत्माएं राजा हैं और एक कर्मेंद्रिया हमारी प्रजा हैं, मंत्री हैं, तो हम आत्माएं शक्तिशाली हैं, ये भी हम स्वयं को अपने आप को चेक करें। और शक्तिशाली कैसे बनेंगे, एक शक्तिशाली राजा शक्तिशाली कैसे बनता है, वो जन्मते शक्ति से तो नहीं बनेगा, अपने कर्म से बनेगा। जन्म होने के बाद जो उसको माँ बाप से संस्कार मिलते हैं, ऊंच कुल के संस्कार मिलते हैं, उन संस्कारों के अनुसार उसके जीवन में व्यवहारिकता का समावेश होता जाता है, जिसके भी समान संपर्क में आएगा वो सबको सुख देगा, सबका दिल जीतेगा, समस्याओं का समाधान करेगा, समस्याएं पैदा नहीं करेगा, कारण का निवारण करेगा, निवारण स्वरूप बनेगा। तो ऐसे हम ब्राह्मण जीवन में हर आत्मा राजा है। जैसे संसार में भी राजा कोई बड़ा राजा कोई छोटा राजा होता है, इस ब्राह्मण जगत में भी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार हर आत्मा राजा है। तो हम स्वयं को देखें, क्या वो हमारे में राजाई संस्कार हैं, राजा के संस्कार हैं, अर्थात आत्मा उतनी शक्तिशाली बन रही है दिन प्रतिदिन? क्या हमें स्वयं को महसूस हो रहा है कि आत्मा में परमात्म शक्तियां भर रही हैं दिन प्रतिदिन? अनेक प्रकार के जो समस्याएं समस्याएं आती हैं उनका समाधान करने के लिए आत्मा शक्तिशाली राजा बन के उचित निर्णय दे पा रहा है, या कहीं हम निर्णय देने में भी लड़खड़ा रहे हैं, या कहीं ना कहीं शक्तियां काम नहीं कर रही हैं, संबंध संपर्क में आ रहे हैं किसी का दिल जीतने की बजाय दिल को दुखा रहे हैं, तो ये राजाई संस्कार नहीं कहेंगे। राजा अर्थात सबके दिल को जीतने वाला, चाहे वो स्थूल सहयोग है चाहे सूक्ष्म सहयोग है। जैसे बाबा ने बताया ना, स्थूल कर्मेंद्रियों को तो जीतना आसान है, स्थूल कर्मेंद्रियां आंखें हाथ इत्यादि, इनको तो फिर भी जीतना आसान है क्योंकि दिखाई दे रही है, लेकिन जो अदृश्य हैं सूक्ष्म हैं मन बुद्धि संस्कार जो कि दिखाई नहीं दे रही हैं, इन पर हमारा कितना आधिपत्य है, कितना अधिकार है। तो स्वयं को देखना है कि हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, हमारी जो प्रजा है, उसको हम बड़े प्यार से चला रहे हैं, क्योंकि हर इंसान जैसे प्यार चाहता है ऐसे कर्मेंद्रियां भी हमारी एक राजा की फैमिली को, परिवार को, परिवार है और परिवार को प्यार से चलाया जाता है। ऐसा नहीं है मनमानी ढंग से चलाएंगे, सबकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उनके दिल को देखना पड़ता है, उनकी बात को सुनना पड़ता है, उनको समय देना पड़ता है। उसी तरह मैं आत्मा का राजा हूँ तो क्या मैं अपनी कर्मेंद्रियों के लिए समय दे रहा हूँ? जो कर्मेंद्रियाँ अनेक जन्मों से दुखी हैं, जिन कर्मेंद्रियों ने बुरा, चाहे मन है बुद्धि है संस्कार है, जो सूक्ष्म कर्मेंद्रियाँ हैं चाहे स्थूल हैं, जिन आँखों ने लंबे समय तक बुरा देखा है, क्या उन आँखों को मैं बुराई से मुक्त करने के लिए समय दे रहा हूँ? उन आँखों को परमात्म दृष्टि से भरपूर कर रहा हूँ, परमात्म नज़रों से निहाल कर रहा हूँ? उन आँखों के लिए जो परमात्मा ने श्री बाबा ने हमको शिक्षाएं दी हैं, उन शिक्षाओं को जीवन में ला रहा हूँ? जो आत्मिक दृष्टि का अभ्यास बाबा ने हम सबको बताया है, या विश्व को साकाश दो, इन आँखों में परमात्मा को संभालो, तुम जहान के नूर हो, तो इस नैनों को हमने परमात्मा के नूर से भरा है? दिन प्रतिदिन ये आँखें पवित्रता के प्रकाश से जगमगा रही हैं, या वही वही दृश्य दिन प्रतिदिन हमारे जो पुराने थे उन्हीं को हम प्रगाढ़ करते जा रहे हैं? तो ये स्वयं की कर्मेंद्रियों पर भी, स्थूल भी और सूक्ष्म भी, जिस मन से आत्मा राजा दुखी हो चुका है, कई प्रकार के उल्टे पुल्टे संकल्प जो मन में भर के रखे रखे हैं, अनेक प्रकार की जो समर्थियां हैं उसके जो छाया चित्र हैं, जो आत्मा के ऊपर जिन स्मृतियों ने आत्मा को ढक दिया है, उन स्मृतियों से बाबा हम सबको बाहर निकालने आए हैं। जो स्मृति हमको बहुत दुख देती थी, दर्द देती थी, स्वयं के अंदर घृणा भाव पैदा करती थी, तो उन स्मृतियों से हम स्वयं को किनारे कर रहे हैं, या उन स्मृतियों को हमने पकड़ के रखा हुआ है? तो देखना है कि जो स्थूल भी और सूक्ष्म भी, जो कर्मेंद्रियां हैं, जो हमारी प्रजा है या जो फैमिली है, उस फैमिली का हम पूरे प्यार से, मनोयोग से, पूरी निष्ठा से, पूरा टाइम देकर उसके ऊपर अपन नज़र रख रहे हैं। स्वयं की फैमिली को अगर हम प्यार से नहीं चला पाएंगे तो संसार को कैसे चलाएंगे, समाज को कैसे चलाएंगे, देश को कैसे चलाएंगे? इसलिए बाबा कहते हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम। एक है स्थूल से, लेकिन सबसे पहला होम तो ये वाला है, जिस होम में हम 2400 घंटे रहते हैं। ये जो घर हमको मिला हुआ है, शरीर रूपी घर जिसके अंदर आत्मा रहती है, इस घर को हमने कितना स्वच्छ बनाया है। वैसे भी अगर हम देखते हैं जिस स्थान पर हम रहते हैं, अगर वो स्थान बहुत बदबू वाला है, गंदा है, सामान बिखरा पड़ा है, सफाई नहीं कर रहे हम उधर की, सब इधर उधर पड़ा है सारा सामान, तो कैसा लगता है वो? और जो स्वच्छ है वो आकर्षण होता है उसके प्रति। तो ये देह रूपी घर भी हमको मिला हुआ है, जिसके अंदर कर्मेंद्रिय सारा परिवार बैठा हुआ है, इस घर को हमने कितना स्वच्छ बनाया। इसलिए पहले से हमें स्थूल पर काम करना है। अगर हम सीधा सूक्ष्म पर कूद जाएंगे तो स्थूल की जो महसूसता नहीं होगी ना, तो स्थूल में परिवर्तन भी नहीं होगा। और सूक्ष्म में महसूस होना लंबे समय की स्थूल अभ्यास के बाद ही सूक्ष्म की तरफ पहुंचा जा सकता है। अर्थात हमारी जो यात्रा है वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर है। ऐसा नहीं है केवल मैं सीधा आत्मा हूं, लेकिन जिस स्थान पर आत्मा रहती है उस स्थान से आत्मा का प्यार बहुत है, छोड़ेगी नहीं उसको वो। भले हम योग में बैठते हैं, मैं आत्मा हूं, लेकिन जहां आत्मा रह रही है, जिन व्यक्तियों के साथ, जिस देह के साथ, जिन साधनों के साथ, जिन वैभवों के साथ, मुरली में है ना जिक्र, वहां आकर्षित तो करेंगे जरूर, लेकिन उनको हम उनसे हमको किनारा नहीं करना है। उनको वहां अनासक्त भाव से उनका हमको सदुपयोग करना है, उन्हें हमें ईश्वरीय कार्य में लगाना है। जैसे स्थूल तो हमको बहुत बहुमूल्य संपत्ति है, ये अगर ये संपदा जो है, ये जो एक निधि खजाना है हमारा जो शरीर है, इसको हम तंदुरुस्त नहीं रखेंगे, ठीक से नहीं रखेंगे, तो ईश्वरीय सेवा क्या कर पाएंगे? तो इस परिवार को भी चलाना, बड़े प्यार से समझना है, इसको सोचना है कि बहुत गहरी मशीनरी है शरीर भी, शरीर की वास्तविकता को समझना है, सच्चाई को समझना है उसकी, तो हम आत्मा जो राजाएं हैं उसका हम सुख महसूस कर पाएंगे। जैसे मंदिर में वहाँ बहुत स्वच्छता होती है, साफ सफाई होती है, कैसा बैठे रहने को मन करता है। भक्ति मार्ग में सबने अनुभव किया होगा, जिन मंदिर में बहुत स्वच्छता होती है ना, बहुत मनोयोग से कीर्तन करते हैं, कैसे बैठे रहते हैं लंबे समय तक। ऐसे ये देह रूपी मंदिर है, इसकी स्वच्छता रखनी है, अलौकिक स्वच्छता, अलौकिक नशा रहेगा। तो पहली बात जो बाबा ने कही, राज ऋषियों के दरबार है, तो हमें स्वयं को देखना है कि मैंने अपने दरबार में बैठ के इन कर्मेंद्रियों को, इस परिवार को, प्रजा को किस तरीके से पालना दे रहा हूं मैं, कहां तक ये कर्मेंद्रियां बदली हैं, परिवर्तन हुई हैं, और अगर नहीं बदली हैं तो क्या क्या कारण है, क्या मैं उनको समय नहीं दे रहा हूं, या उनके बारे में सोच नहीं रहा हूं, या उनके बारे में जो ईश्वरीय मर्यादाएं मिली हैं, ईश्वरीय शिक्षाएं मिली हैं, एक श्रीमत मिली है, डायरेक्शन मिला है, क्या मैंने उसको समझा नहीं अभी तक, या वो ही कर्मेंद्रियां पुराने भोग भोगने में लगी हुई है, तो फिर योग लगेगा कैसे? हर कर्मेंद्रिय के लिए बाबा ने नॉलेज दी हुई है, उस नॉलेज को हम अपने जीवन में कितना अनुपात में ला पा रहे हैं हमारे पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। जैसे बताया बाबा ने, भाग्य विधाता ने, बाप ने खजाने तो सारे दे दिए हैं, लेकिन उस खजाने को हमने कितना लाया है, हर एक के अपने ऊपर है। तो रोज बाबा हमको इतना अथाह खजाना देते हैं, जिसके लिए बाबा कितना इम्पोर्टेंस भी देते हैं, महत्व देते हैं, कि कभी भी मुरली मिस नहीं करो। अगर कारण या कारण अगर हम क्लास में नहीं जा पाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन डेली व्यक्तिगत स्तर पर मुरली पढ़ना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि मुरली क्लास में हमने एक बार सुन ली, एक बार में समझ में नहीं आती, जब तक हमारी नजरों के आगे से हर एक लाइन ना निकले, उस पर थोड़ा ठहरना पड़ता है, रुकना पड़ता है, उसके बारे में सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, बहुत गहरे गहरे राज होते हैं जो निकल जाते हैं। लंबे समय सुनने के बाद भी कोई कोई 40-50 वर्ष भी दादियों के मुख से ऐसे निकलता था कि अभी भी मुरलियां नवीन लगती हैं, उनमें नवीनता लगती है। तो इतने लंबे समय से दादियां मुरलियां सुन रही हैं और फिर भी उनको नवीनता लगती है, देखो तो कितना दादियों ने भी मुरलियों का महत्व रखा है। तो व्यक्तिगत स्तर पर हमको अगर मुरली के प्रति लगाव नहीं है, मुरली के प्रति हमारा विशेष एक आकर्षण नहीं है या ध्यान नहीं है, तो हमारा वो इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा, और इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है, तो हमारा मन भी भटकता रहता है, और जिस काम के लिए हमको रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है, वहां मन तुरंत एकाग्र हो जाता है। मन को एकाग्र करने की जरूरत नहीं है, मन स्वतः एकाग्र होता है अगर हमारी रुचि है तो। योग में हमारा मन क्यों भटकता है, क्या कारण है? क्योंकि हमारी रुचि नहीं है, सीधी सी बात है। अगर रुचि है तो मन इम्पॉसिबल है, मन भटक ही नहीं सकता है। अगर भटकेगा तो एकाग्र होने के तरीके स्वयं ढूंढेगा, क्योंकि उसको रुचि है, वो कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। अगर हमको रुचि है कहीं जाने की तो सारी व्यवस्थाओं का जो हम उन व्यवस्थाओं को देखने के लिए हम कोई ना कोई योजना तो करेंगे, व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए हम तो योजना चालू सोचना शुरू कर देंगे। माना आज हम कल हमको दिल्ली जाना है तो हम सोचेंगे नहीं सोचेंगे, उधर दूसरा को कारण मन में प्रश्न नहीं आने देंगे, क्योंकि हमको जाना है, हमको पता है वहाँ कुछ तो हमको मिलने वाला है, कुछ अवार्ड मिलने वाला है, कुछ बड़ी प्राप्ति होने वाली है, तो हम योजनाएं बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, फिर मन बुद्धि भटकेगा। अभी अगर हमको मिल जाएगा कल जाना दिल्ली तो अभी यहाँ से क्या चालू करेंगे, अभी से तैयारी कर देंगे, अभी कपड़े इकट्ठे करेंगे, रास्ते के लिए भोजन करेंगे, टिकट करेंगे, मन बुद्धि भटकेगा उसमें। फिर एकाग्रता की शक्ति तो है अंदर की नहीं, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है जाने का, रुचि है। उसी तरह ज्ञान योग में अगर हमारी रुचि है तो मन की शक्तियां स्वतः काम करेंगी, केवल रुचि को बढ़ाना है। और रुचि तुरंत बढ़ती नहीं है, थोड़ा तो उसके ऊपर काम करना पड़ता है। इच्छा अगर हमारी ये अलौकिक इच्छा जिसको कहीं रूहानियत या पुरुषार्थ करने की इच्छा कैसे पैदा हो, इसके लिए बहुत सारी सावधानियां बरतने की जरूरत है। हमारा संघ श्रेष्ठ हो, भले हमारा भाई बहनों से संबंध संपर्क हो, संघ हो तो ठीक है, लेकिन एक स्वयं अकेले में जब हम रहते हैं तो वहाँ हमारा कौन कौन सी चीज़ों में ध्यान जा रहा है, स्थूल साधनों में जा रहा है या कहीं हमारे संस्कार ही हमको खींच रहे हैं, जो बाबा ने कहा अनादि आदि तुम्हारे संस्कार हैं, या कि मध्य के संस्कारों को पकड़ के बैठे हुए हैं, या वो ही संस्कार जो इस शूद्र जीवन के हैं वो भी हमको पता सारा, क्या उन्हीं को पकड़ के बैठे हैं। तो उन संस्कारों से हमें उनको घबराना नहीं है, जो भी हमारे से गलतियां हुई हैं उनको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, वो तो हो चुकी हैं, उनको तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उनको हमको ज़्यादा याद नहीं करना है, वो तो बीत गया, वो तो भगवान ने हम सबको जन्मते वरदान दे दिया, पवित्र भव योगी भव। जो पहले की गलतियां हैं उनका इतना पाप नहीं है, ब्राह्मण बनने के बाद जो हम गलतियां करते हैं उनका पाप बहुत ज्यादा है। तो पास्ट का तो भूल जाने का, बार बार उसको स्मृति में लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो स्मृति से विस्मृत कैसे होंगे, पुरानी स्मृतियों से, नई स्मृतियों को हमको एकत्रित करना है, नई नई स्मृतियां, नए नए सोमान, उन्हें स्वयं को उन सोमान से स्वयं को फुल करना है, चार्ज करना है, नए नए तरीके से उनका स्वयं के ऊपर उपयोग करना है, प्रयोग करना है उसका, उनको बुद्धि में रखना है, बुद्धि की ड्रिल करनी है। तो अनादि आदि संस्कार जैसे बाबा ने कहा तुम्हारे कौन से हैं, सर्वगुण संपन्न वाले संस्कार हैं, परमधाम के संस्कार कौन से हैं, शांति वाले संस्कार हैं, आदि संस्कार कौन से हैं, देवताई संस्कार हैं। तो संस्कारों के ऊपर हमको काम करना है। बाबा कहते हैं आप बैठ जाओ लक्ष्मण के चित्र के आगे कि ये हम ही, ये ऐसे मैं देवी देवता था, वो सारे मेरे संस्कार हैं, जो सर्वगुण संपन्न कौन कौन से गुण हैं वो सारे गुण मेरे में हैं, संपूर्ण निर्विकारी वो स्वयं संपूर्ण निर्विकारिता वो हमारे में है, क्योंकि स्मृति स्वयं भगवान ने दिलाई है, कोई मनुष्य थोड़ा नहीं हमको पढ़ा रहा है, कोई मनुष्य थोड़ा हमको झूठा मोटा कुछ ज्ञान सुना रहा है, स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम सत्य सुप्रीम आकर हमको बता रहा है कि तुम ये थे, तुम हो, कल्प कल्प के विजयी हो, बताया ना पहला पर पार्टियों के साथ, तुम कल्प कल्प के विजयी आत्माएं हो। तो विजयी आत्माएं हो तो क्यों विजयी हो, क्या कारण है, उसकी चार बातें बताई, कौन कौन सी, मुरली तो सुनी ना सभी ने, तो कौन सी बातें बताई, क्यों विजयी हो, क्या कारण है विजयी, ऐसे थोड़ा विजय घोषित कर दिया, भगवान ने कहा तो कुछ तो हुआ है ना, क्या कारण है, कल्प कल्प के तुम विजयी आत्माएं हो, क्योंकि उसने हमारी सारे कल्प की जन्म पत्री को देखा है, ऐसे थोड़ा भगवान ने कह दिया, कोई झूठा मोटा ज्ञान थोड़ा नहीं दे रहा है, उसने कहा तो जन्म पत्री उसके हाथ में है ना, माँ बाप को हमारी जन्म पत्री का पता होता ना सारा, तो उसने कहा तुम कल्प कल्प के विजयी आत्माएं हो, कोई भी मुश्किल काम होता है अगर उस मुश्किल काम को बार बार किया जाए तो वो सहज हो जाता है। तो ऐसे तुम बच्चों ने अनेक बार पुरुषार्थ किया हुआ है, अनेक बार तुम विजयी आत्माएं बने हो, अनेक बार तुमने निश्चय से पुरुषार्थ के बल पर जीत प्राप्त की है, विजय प्राप्त की है, इसलिए तुम कल्प के विजयी आत्माएं हो। तुम्हें निश्चय है और निश्चय की निशानी है नशा, और नशे की निशानी है खुशी, और संसार में किस चीज की आवश्यकता है, खुशी की है, और खुशी हमारा खजाना है, निजी संपत्ति है। खुशियों का सागर ने आके हमारे ऊपर खुशियों की बरसात कर दी, खुशियां उड़ेल दी, किस रूप में, ज्ञान के रूप में, योग के नए नए प्रयोग के रूप में, स्वयं हमारे सामने वो उपस्थित हो गया। तो हमको स्मृतियां रहेंगी तब तो हम विजयी का नशा रहेगा ना, और हमको स्मृतियां नहीं है कि भगवान सवेरे सवेरे क्या सुना के गया और समस्या आ रही है तो उसमें हमको याद थोड़ा नहीं रहेगा। तो हमको स्मृतियां तो समर्थ बनानी पड़ेंगी ना, स्मृतियों को बार 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 रियलाइज करना, रिकॉल करना, उनको दोहराना है मन बुद्धि में, नहीं तो हमारे संस्कार और भगवान के संस्कारों में जमीन आसमान का अंतर दृष्टिगोचर होता रहेगा। पुरुषार्थ में हमारी वृद्धि हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, अर्थात जो भगवान के महावाक्य हैं, जो भगवान के मुख से निकलता है वही हमारे मुख से दिन प्रतिदिन उसमें प्रगति होनी चाहिए, हमारे बोल में परिवर्तन होना चाहिए। बताया ना लास्ट लाइन मुरली की थी सुदर्शन चक्रधारी में, हर बोल हर कर्म कैसा होगा उनका, श्रेष्ठ होगा वो। तो अपने स्वयं को हमको चेक करनी है, क्या हमारे संकल्पों में श्रेष्ठता आ रही है, हमारे बोल में श्रेष्ठता आ रही है, हमारी व्यवहारिकता में श्रेष्ठता आ रही है, स्वयं को जांच करने की जरूरत है। और समय भी अभी ऐसा ही चल रहा है, दूसरों को जांचने की जरूरत नहीं है, स्वयं को जांचना है, स्वयं का निरीक्षण करना है, स्वयं का अवलोकन करना है, आत्म विश्लेषण करना है, बार बार देखना है, स्वयं के अंदर झांकना है, जीना है, स्वयं में जीना है, और स्वयं में जीने में बड़ा सुख है। हम दूसरे के जीवन को देख के जीते हैं तो कहीं ना कहीं दुख हमारे मन में बहुत आ जाते हैं, वहां कंपेरिजन का भाव पैदा है, तुलना करते हैं हम। बाबा ने कहा याद की रेस करो, कल की मुरली थी ना, याद की रेस करो, पुण्य आत्मा बनो। तुमको स्वयं ही अपने आप का अवलोकन करना है, स्वयं के स्वमान में स्थित रहना है कि मैं आत्मा राजा हूं, तो मेरी राजा की क्वालिटी, वो विशेषताएं क्या मेरे में है, क्या वो मन जो संकल्प करने के लिए बाबा ने दिया है कि सिर संकल्प घृषणा करो, कि संकल्प हमको ये करना है और आ कोई दूसरा रहा है, अर्थात संकल्पों का जो खजाना भगवान ने हमको दिया है उस खजाने को हमने संजो कर नहीं रखा है। तो संकल्पों का खजाना होगा तभी तो वो काम करेगा समय पर, नहीं तो संकल्प करेंगे एक और आएगा दूसरा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, अभ्यास नहीं है। और उसमें बाबा को भी क्या कह सकते हैं, फिर हम कहेंगे बाबा तो मदद नहीं करता, बाबा तो मदद कर रहा है, सवेरे 24 आवर मदद कर रहा है, अभी भी कर रहा है। अगर हम अभी ज्ञान चिंतन कर रहे हैं किसकी मदद है, भगवान की मदद है। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो भगवान की मदद को जैसे हम ठोकर मार रहे हैं, सीधी सी बात है। समय का खजाना भी हमारे पास है ना, जैसे एक चिंतन करने का मौका मिला हम सबको, तो ये खजाना हम समय का भगवान ने दिया, ये जीवन भगवान का है, उसी के दिए हुए संकल्प हैं जिनका हम मन चिंतन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो उसकी मदद नहीं तो किसकी मदद है। अगर हम एकत्रित नहीं होंगे तो फिर मदद का अनुभव कैसे होगा, फिर हम दोष देंगे कि बाबा तो मदद नहीं करता है। बाबा को सीधा कोई हाथ थोड़ा सिर पर रख के रखेगा, वो तो एक अलग बात है कि हम योग में ऐसे अनुभव करें, लेकिन जब तक हमने ज्ञान में इसका अनुभव नहीं किया तो योग में अनुभव नहीं होगा। योग का आधार क्या है, ज्ञान। ज्ञान मतलब समझ, अंडरस्टैंडिंग है। अगर हम ज्ञान के बिना योग में बैठते हैं तो वो जैसे अंधश्रद्धा वाला योग है, केवल टाइम पास करने वाला योग है, खाना पूर्ति करने वाला योग है, उसमें अनुभव नहीं होंगे। थोड़ा सा मन में एक सूक्ष्म रहेगा, हाँ हम योग में बैठे थे, हाजिरी तो लग जाएगी लेकिन वो अनुभूति नहीं होगी। जीवन में जो परिवर्तन होना चाहिए वो नहीं होगा, एक आत्म संतोष का भाव जागृत होना चाहिए वो नहीं होगा, जो खुशी रहनी चाहिए वो नहीं होगी, अंदर ही अंदर एक कोने में गिल्ट कॉन्शियस होगी। तो देखना है कि भगवान हमारी जो हमें इतनी मदद कर रहा है, उस मदद का हम कितना पात्र बने हैं। अगर नहीं बने तो क्या क्या कारण है, कहाँ कहाँ हमने अपने टाइम को ऐसे बांट के रखा हुआ है, जो टाइम हमारा वेस्ट चला जा रहा है, झरमोई जगमोई में उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इन सब बातों में जा रहा है। स्वयं को जांचना है। बुद्धि के बारे में बाबा ने कहा कि यथार्थ निर्णय, उचित निर्णय बुद्धि दे तुरंत। ऐसा नहीं है कि परिस्थिति आई और निर्णय हमको दूसरा ले रहे हैं, परिस्थिति निकल गई है फिर बाद में हम सोचे निर्णय ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। तो निर्णय भी यथार्थ कब होगा? जब हम सरेंडर बुद्धि होकर रहेंगे, बुद्धि से सरेंडर, समर्पण भाव चाहिए पूरा। स्वच्छ बुद्धि, क्लीन बुद्धि, क्लियर बुद्धि, जो बाबा ने कहा अंत समय में जिसकी बुद्धि रूपी लाइन क्लियर होगी वही टच कर सकेगा। तो हमें स्वयं का निरीक्षण करना है कि कितना हम अपने मन बुद्धि को स्वच्छ बना रहे हैं। दिन प्रतिदिन हमारी प्रोग्रेस हो रही है, तरक्की हो रही है या नहीं हो रही, तो उसकी क्या का कारण है खुद को देखना है। संस्कारों के बारे में बाबा ने कहा कि संस्कार कौन कौन से संस्कार, जिन संस्कारों ने आत्मा को बांध के रखा हुआ है। आधुनिकता के संस्कार आजकल तो सारा उसी का ही, माया नए नए रूप में आती है, एक रूप में थोड़ी आएगी वो तो नए रूप, जिस रूप में हमने माया को परास्त करने की विधि सीख ली है उस रूप से माया नहीं आएगी, नए रूप से आएगी वो। आकर्षण कहीं ना कहीं अलग रूप से होगा, बताया ना बाबा ने, साइंस की शक्ति जैसे इस धरने के आकर्षण से परे ले जाती है, ऐसी साइलेंस की शक्ति भी तुम्हें कहां से परे ले जाएगी? साइलेंस की शक्ति से क्या क्या हुआ, वो भी संसार के देह के आकर्षण से, देह के जो पुराने संस्कार हैं, पुरानी स्मृतियां हैं, उनसे परे ले जाएगी। क्योंकि साइलेंस में सुख है, शक्ति है, साइलेंस में बहुत ताकत है, बल है, लेकिन वो साइलेंस इस ज्ञान के आधार पर हमको साइलेंस का बल पैदा होगा। क्योंकि ज्ञान हमको निराकारी अवस्था की तरफ ले जाता है। ज्ञान कहाँ से आ रहा है? निराकारी दुनिया से आ रहा है, है ना? जैसे एक मुरली की शुरुआत थी बाबा की, आज आवाज से परे की दुनिया में रहने वाला बाप आवाज की दुनिया में आकर आवाज में रहने वाले बच्चों को आवाज से परे ले जाने के लिए आए हैं आवाज के द्वारा। तो ये कहां से आए सेंटेंस, महावाक्य परमधाम से आ रहे हैं, निराकारी दुनिया से। तो ये सेंटेंस ही आत्मा को जैसे साइलेंस में लेके चला जाता है, ये आवाज तो है लेकिन ये सेंटेंस जैसे आवाज से परे लेके चला जाता है। तो निराकारी अवस्था का जो स्वभाव ने कहा जाएगा निर्लेप अवस्था, निर्लेप स्थिति के अधिकार है हमारे पास, सर्व प्राप्तियों का अधिकार है लेकिन उनका आकर्षण नहीं है। ऋषि भी है अर्थात वो रजाई भी है और ऋषि भी है, तपस्या भी है। तपस्या के मार्ग में वो रजाई के साधन हमको विचलित नहीं करेंगे, हमको वो आकर्षित नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे, बल्कि उन साधनों का हम सदुपयोग करें, है ना? जो अभी 23 तारीख को मुरली चली है उसमें बाबा ने कहा साइंस वालों को ऐसे नहीं समझना, उन्होंने अगर इन्वेंशन किया तो वो सुख के लिए की है, कितने मेहनत की है। तो साइंस के साधन भी हमारे लिए वरदान है, अभिशाप में नहीं है, लेकिन साइंस के साधनों का हम सदुपयोग करें, वो हमारी साधनों को खंडित ना करें, साधना को बढ़ाते जाएं वो साधन भी। लेकिन हमें इतना भी डिपेंड नहीं हो जाना है उन साधनों पर कि बिना साधनों के हम साधना ना कर सकें। साधना हमारी किसी कोई विशेष स्थान से महत्व नहीं रखती है। हाँ, प्रारंभिक दौर में जब बच्चा स्कूल में जाता है तो उसके लिए सारी बातें मायने रखती हैं, चाहे वो स्कूल का संघ भी है, चाहे वो स्थान भी है, टीचर की हेल्प भी है, वो सब चीज़ें मायने रखती हैं। लेकिन जब बच्चा मैच्योर हो जाता है तो वो कहीं भी रह के अपनी जो योग्यताएं हैं उनको काम में ला सकता है। बाबा हम सबको दिन प्रतिदिन जो हमारे में योग्यताएं भरती हैं तपस्वी मूर्त आत्मा बनाने के लिए, तो जब हम इस ज्ञान में मैच्योर हो जाते हैं तो किसी भी स्थान पर कहाँ भी बैठ के हम एक सेकंड में डिटैच हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम मधुबन में बैठे हैं तो हमारा योग चलेगा, या शांति स्थान पर बैठे हैं तो योग चलेगा, या बाबा के कमरे में जगह नहीं मिली तो हम विचलित हो गए हैं, या कुटिया में जाके देखा वहाँ तो भी सारा भरा पड़ा है, कोई है नहीं जगह बैठने की। जिस स्थान में हम रहते हैं ये जीवन ही हमारा मधुबन बन जाए, ये जीवन ही हमारा चार धाम से संपन्न हो जाए, ये जीवन ही टावर ऑफ पीस बन जाए, ये जीवन एक यज्ञ है और इस यज्ञ में क्या क्या है वो सब इस जीवन में भी है। आज जीवन के बारे में बाबा ने एक चीज बताई, कौन सी? जीवन में दो चीजों का संतुलन होना चाहिए, कौन सा? तो कहेंगे विशेष। हाँ जी, हाँ, संतुष्टता, जीवन में संतुष्टता और सरलता का संतुलन ही क्या है, विशेषता है। तो हमारे जीवन में संतुलन होना चाहिए हर चीज का, अर्थात हम जिस भी स्थान पर रहें उस स्थान पर ही हम एक यज्ञ की तरह हमारा जीवन बन जाए। यज्ञ में क्या होता है, आहुतियां पड़ रही हैं, ऐसे हमारा हर बोल हर संकल्प संसार के विकर्मों को विनाश करने के लिए, संसार की आत्माओं की बुरे कर्म हैं या जो उनके बुरे संस्कार हैं, संकल्प हैं, उनकी आहुतियां हमारे वाइब्रेशन से भस्म होती रहें। जैसे ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी से निरंतर आग निकलती रहती है, ऐसे हमारे शक्तिशाली संकल्पों की अग्नि के वाइब्रेशन निरंतर फैलते रहें। और हर आत्मा से, चाहे कोई ज्ञानी है चाहे कोई नहीं है, हर आत्मा से निरंतर 24 आवर वाइब्रेशन तो निकलते ही रहते हैं उसकी अवस्था के अनुसार, चाहे वो टेंशन में है, चाहे वो शांति में है या दुख में है, चाहे सुख में है, आनंद में है, प्रेम में है, वो वाइब्रेशन 24 आवर निकलते रहते हैं। अगर हम ज्ञान योग की अवस्था में रहते हैं तो 2400 घंटे, चाहे हम सोते समय भी हैं, 2400 घंटे वाइब्रेशन निकलते रहते हैं। बाबा ने कहा ना, तुम स्थापना कर रहे हो, चैलेंज करते हो संसार को। क्या चैलेंज करते हो, आज की मुरली में था, हम चैलेंज करते हैं कि संसार को एक राज्य बनाएंगे, एक धर्म की सुनहरी दुनिया लाएंगे, एक मत से। जैसे ब्रह्मा स्थापना के कार्य में संलग्न है, ऐसे तुम बच्चे ब्राह्मण आत्मा भी ब्रह्मा समान हो। हर ब्राह्मण आत्मा एक अपने आप में ब्रह्मा है, अपने संकल्पों की सृष्टि से पूरे संसार को, पूरी कायनात को प्रभावित कर रहा है। जो भी हमारे संकल्प हैं, एक एक संकल्प पूरी सृष्टि में जा रहा है, वाइब्रेशन के रूप में जा रहा है। तो हम स्वयं को देखें कि सारे दिन में हम कितना ज्ञान योग धारणा सेवा में स्वयं को अनुभव रखते हैं। सारी ये मन की अवस्था की बात है। स्थूल रूप से कार्य करना तो आसान होता है, बाबा ने कहा ना, स्थूल कर्मेंद्रियों से कर्म करना तो आसान है, उनको जीतना भी आसान है, लेकिन जो सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं उसमें मेहनत सारी। तो सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ हम सूक्ष्म कर्मेंद्रियों से धोखा कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हमारी हार हो रही है, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क दृष्टि वृत्ति श्वास, कहाँ कहाँ हम उसको सफल करने में पीछे हट रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो ये स्वयं के ऊपर नजर रखनी है। और मेला, इस मुरली में एक मेला भी था, किसका मेला था, ये आत्माओं का। और मुरली में क्या कहा, परमात्मा का। और आज की मुरली में मेले से संबंधित क्या कहा, ये है नदियों और सागर का मेला। और मेले में क्या होता है, क्या था, जलेबी होती है, पकौड़े होते हैं। तो ज्ञान युग की जलेबियां इकट्ठी करनी है, हर चीज को ज्ञान युग से जोड़ना है। तो बाबा ने कहा मेले में मिलना होता है और माल होता है उसमें। तुम्हारा जीवन भी एक मेला है, अब इस मेले में क्या क्या हो रहा है वो देखना है। जैसे हम मेले में जाते हैं तो क्या क्या होता है वहां, मिठाइयां होती हैं, खिलौने होते हैं, बहुत सारे लोगों को देखते हैं, खुशी होती है मेले में, उंगसा होता है, नए नए कपड़े पहनते हैं। तो हमारा ब्राह्मण जीवन में एक मेला है, इस मेले में क्या क्या कर रहे हैं हम, अपने जीवन में कितना माल इकट्ठा किया है, ज्ञान का खजाना कितना इकट्ठा किया है, ज्ञान के हीरे मोती हमने अपनी झोली में कितने भर के रखे हुए हैं, कितना उनको बांट रहे हैं। बताया ना बाबा ने कि तुम भाग्यवान आत्माएं हो, ऐसा अनपने को अनुभव करते हो, भाग्य विधाता बाप ने तुमको सारे खजाने दिए हैं। तो हमको देखना है इस मेले में ब्राह्मण का, जो ब्राह्मण जीवन ही जो मेला बन गया है, इस मेले से हमने क्या क्या फायदा लिया। हमारा जीवन मेले समान बना है, कोई भी समान संपर्क में आ रहा है तो कुछ हमारे से वो प्रेरणा ले रहा है परिवर्तन करने की, कुछ तो एक ही बात को सीख रहा है, अपने आप को खुश रखने की कला सीख रहा है, या कुछ मनन चिंतन करने की कला सीख रहा है, या कुछ दूसरों से गुण उठाने की कला सीख रहा है, कुछ ना कुछ सीखना है। दूसरे भी हमारे जीवन में से सीखें, ऐसा हमको कर्तव्य करना है, ऐसे हमें अपनी चाल चलन बनानी है, और हमें भी दूसरों के जीवन से सीखना है। कोई कैसा भी है ना, भले किसी के बारे हमें कोई कहता भी है कि फलाना ऐसा ऐसा है, उसने सुना दी लेकिन हमने तो देखा नहीं उसको, हमको तो उसमें गुण ही दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बा इसलिए बाबा कहते सुने सुनाए बातों पर विश्वास नहीं करो। हो सकता है उसने अपने तरीके से ठीक कहा होगा, लेकिन हमारा दिन प्रतिदिन परिवर्तन हो रहा है। मान लो 20 साल पहले हमारे से कोई बुरा कर्म हुआ, अब 20 साल का डिस्टेंस कितना हो गया, 20 साल के बाद हमने उस बुराई पर नजर रखी है और उसको छूटने के लिए हमने पूरा प्रयास किया है, पूरी मेहनत की है और मुंह से छूट भी गए, लेकिन अभी भी अगर हमने वही छवि बना के रखी है तो वो सारे अवगुण हमारे में प्रवेश कर जाएंगे, वो हमारी कमजोरी बन जाएगी और वो ही कमजोरी माया का गेट बन जाएगा जो अंत में हमको धोखा दे सकता है और उस तख्त पर माया बैठ जाएगी। बाबा ने कहा ना तुमको तख्त दिया है लेकिन तुम्हारे तख्त पर कभी कभी माया बैठ जाती है, किस रूप में, कमजोरी के रूप में। कहा ना मुरली में अगर एक भी गेट खुला रह गया तो माया के गेट तो खुले हैं, ऐसे एक भी अगर कमजोरी रहेगी तो सारे जंगल को तबाह कर देगी, हमारे सारे जीवन के ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ को खत्म कर देगी। तो कितना कदम कदम पर हमको सावधानी रखने की जरूरत है और समय किस दिशा में जा रहा है, क्या क्या समय हमको पाठ पढ़ा रहा है। यज्ञ में जो परिवर्तन हो रहे हैं, दादियां एडवांस में जा रही हैं तो हमको क्या पाठ पढ़ा रही हैं, कितना परिवर्तन की गति हमको बढ़ानी होगी, कितना तेज कदम चलना होगा, कितना भागना होगा, कितना जंप देना होगा, समय पर कितना हमारा अटेंशन चाहिए, तो स्वयं को देखने की जरूरत है। तो राजा भी हैं हम और ऋषि भी हैं, अर्थात राजा अर्थात सर्व प्राप्तियों के अधिकारी। तो हमको चेक करना है कि राजाई जीवन हमारा है, अर्थात हम अपने कर्मेंद्रियों के राजा हैं, हमने अपने कर्मेंद्रियों का सुना है, अपनी कर्मेंद्रियों को हमने ईश्वरीय कार्य के लिए योग्य बनाया है, उनको हम पूरा सफल कर रहे हैं और तपस्या में भी वो कर्मेंद्रियाँ हमारी सहायक होंगी जब हम अपनी कर्मेंद्रियों को पुरुषार्थ के मार्ग पर चलाने के योग्य बनाएंगे। तो राजा और ऋषि, और क्या बैलेंस बताया, त्याग और भाग्य, जितना श्रेष्ठ त्याग उतना भाग्य अनुभव, बिना त्याग के भाग्य का अनुभव होगा नहीं। कोई भी अगर स्थूल में भी अगर हम त्याग करते हैं तो अंदर में एक शक्ति जमा होती है, बल जमा होता है, तो स्थूल में त्याग भी बहुत जरूरी है। सूक्ष्म त्याग तो है ही है लेकिन स्थूल त्याग भी बहुत है। सूक्ष्म में जो हमारी आदतें हैं उनको छोड़ देने का है ना, एक छोटी सी आदत, मान लो मोबाइल हम चलाते हैं और मोबाइल में हम जो चीज़ हमको जिससे हमको फायदा नहीं हो रहा है वो हम बिना मतलब के देखे या व्हाट्सअप देख रहे हैं, लेकिन उसका देखा परिणाम तो कुछ नहीं है। उतना टाइम छोड़ दो उसको, पुरुषार्थ करो उतना टाइम, कुछ मुरले के पॉइंट पढ़ो, चिंतन करो, जो उसकी खुशी होगी वो व्हाट्सअप चलाने से नहीं होगी। यूज तो करना उन साधनों का भी, लेकिन थोड़ा थोड़ा हमको उनसे किनारा करना भी बहुत जरूरी है। वो साधन बुरे नहीं है, हम उनको बुरा बनाते हैं। लक्ष्मी बुरी नहीं है लेकिन हमने उसको माया का रूप दे दिया हुआ है। तो स्वयं हमारे पे डिपेंड करता है हम उसको किस तरीके से युद्ध करना है। तो वो फिर हमको, हम राजा को वो कर्मेंद्रियां जकड़ में ले लेती हैं। तो स्वयं को देखना है कि मैं अपने जो राजा के संस्कार हैं, जिस राजा के संस्कारों का रोपण स्वयं भगवान ने बीज रोपे हैं, तो कितना शक्तिशाली बीज होगा। एक एक संकल्प भगवान का वो शक्तिशाली बीज है जो हमारी धरनी पर उसने बोए हैं। और वैसे तो नहीं है कि माया रूपी चिड़िया को हमने अपने मन में घुसा दिया और वो खा के चली गई। भगवान तो सवेरे सवेरे कितने बीज बो के जा रहा है हमारी मन बुद्धि रूपी धरनी पर, लेकिन दिन में कई प्रकार की माया भी चिड़िया भी हमारे मन बुद्धि में हम उनको बैठने तो देते हैं ना, किस रूप में कई प्रकार के आकर्षण हैं। तो देखना है कि मैं राजा हूँ, ऋषि हूँ, त्यागी हूँ, वैरागी हूँ, भाग्य विधाता ने जो भाग्य बांटा हो ऐसा भाग्यवान अपने को अनुभव करता हूँ, सुदर्शन चक्करधारी हूँ, ब्राह्मण चोटी हूँ, ब्राह्मण चोटी आज विवाह ने कहा आपके नाम पर सारा काम होता है, ऊंच ब्राह्मण हो चोटी ब्राह्मण हो तो उस ऊंचाई पर हम स्थित रहते हैं। क्या वो ऊंचे संकल्पों की उड़ान में आत्मा इस नील गगन में या उससे भी पार विचरण करती रहती है? यह सब देह की दुनिया के संस्कार, देह की दुनिया में ही अपने उन संकल्पों के जाल में फंसी रहती है, देखना है हमको। तो जितने भी बाबा मुरलियों में अनेक प्रकार के टाइटल देते हैं उनको देखना कि उसमें कितना ला रहे हैं, और ऐसा नहीं कि सारी मुरली एक ही दिन में आ जाएगी, कुछ ना कुछ हमको डेली मुरली से अपने अंदर लाने का प्रयास करना है, तभी पूजने योग्य बनेंगे। आय का प्रदान था ना, पूजनीय योग्य। कैसे? तत्वों का भाव ने बताया, कौन कौन से तत्वों को याद किया मुरली में, और कौन सी शक्तियों को और कौन सी देवियों को, बताओ अभी आप। काली देवी, काली देवी को किसके रूप में याद किया, कौन सी शक्ति? नर्भयता की शक्ति। तो और दूसरी शक्ति कौन सी बताई? दुर्गा। और तीसरी? संतोषी को सामना करने की शक्ति, है ना? अच्छा, संतुष्टता की शक्ति, और सामना करने की दुर्गा। और तत्वों, कौन से तत्वों को याद किया? वायु और है? हाँ, पवन पुत्र। और दो तत्व और कौन से? देख लो, पृथ्वी को याद किया, सूर्य को याद किया। तो देखो, जिन तत्वों में हम रहते, क्योंकि आत्मा पांच तत्वों के पिंड में विराजमान है, तो डेली एक अभ्यास करना है कि मैं पांच तत्वों के पिंड में विराजमान आत्मा छठे महातत्व की एनर्जी को ग्रहण कर रही हूँ। वो सारे ब्रह्मांड की एनर्जी मुझ में आती जा रही है, और वो सारे पांच तत्वों के अंदर जो आत्मा बैठी है, ये पांचों तत्वों भी आत्मा के अनुकूल ही कर्म करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो नई कमेंट्री अपने आप तैयार करनी है। ओम शांति।